नमस्कार भारत, 19 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में चर्च पर गोलीबारी के सिलसिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। नस्लवाद का है काफी पुराना इतिहास।
ये वही चर्च था जिसे 1820 के दशक में शहर के गोरे नागरिकों ने जलाकर राख कर दिया था।
मीरपुर वनडे मैच में बांग्लादेश ने भारत को हराया। मुंबई में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत। ब्रिटेन में मुसलमानों को किडनी लीवर बदलवाने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार।
Our Muslim patients will spend a lot longer time on dialysis while they are active on the waiting list because they've not.
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। अमरीकी पुलिस के मुताबिक साउथ कैरोलिना के चर्च में हुई गोलीबारी के सिलसिले में 21 वर्षीय डिलन रूफ को गिरफ्तार किया गया है। इस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गोलीबारी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दुनिया के किसी अन्य विकसित देश में इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं होती। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी कहा है कि अमरीकियों को बंदूकों और नस्लभेद के प्रति अपने रवैये को बदलने की सख्त ज़रूरत है। निजेर में अधिकारियों का कहना है कि नाइजीरिया के चरमपंथी गुट बोको हराम ने निजेर के 2 गांवों पर हमला किया है जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बच्चों और महिलाओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत से घरों में आग लगा दी गई। पड़ोसी देश नाइजीरिया की सीमा पार कर आए चरमपंथी लड़ाकों ने निजेर के दिफा क्षेत्र को अपना निशाना बनाया। कुछ दिनों पहले चैड में एक आत्मघाती हमले के लिए भी बोको हराम को दोषी माना जा रहा है। इस हमले में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन की मून ने पर्यावरण संरक्षण पर कड़ा रुख रखने के लिए पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया है। मौसम के बदलाव पर कल प्रकाशित हुए एक आलेख में पोप फ्रांसिस ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोगों और देशों के स्वार्थी रवैये को दोषी ठहराया है और कहा है कि अब भी समय है हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोक लें। महासचिव मून ने कहा कि वे पोप से इस बात पर सहमत हैं कि मौसम में बदलाव एक नैतिक मुद्दा है जिसके लिए तत्काल सामूहिक तौर पर कदम उठाने की जरूरत है।
It is an issue of social justice, human rights, and fundamental ethics.
ये मुद्दा सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और मूलभूत नैतिकता का है। दुनिया के हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वह हमारे घर, हमारी दुनिया और एकमात्र ग्रह पृथ्वी को बचाने की कोशिश करे। हमें उन गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश भी करनी चाहिए जो मौसम के बदलाव से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ये थे बन की मून के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता इमरान फारूक की हत्या के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खालिद शमीम और मोहसिन अली नाम के इन 2 लोगों को तब गिरफ्तार किया गया जब वे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। इमरान फारूक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 2010 में इमरान फारूक की लंदन में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ब्रिटेन की पुलिस पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। यूरोजोन के नेता अगले सोमवार को आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं जिसमें ग्रीस के कर्ज संकट पर बात की जाएगी। इस संकट का हल ढूंढने के लिए लग्जमबर्ग में कल हुई यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही। ग्रीस को इस महीने के अंत तक कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाना है। ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वेरोफाकिस का कहना है कि उन्होंने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक योजना बनाई है, लेकिन किसी भी समझौते के कारगर होने के लिए जरूरी है कि भुगतान राशि को कम किया जाए। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। बीती रात बांग्लादेश के लिए जश्न की रात रही। जश्न तो होना ही था। वनडे रैंकिंग में 8वें नंबर की टीम ने दूसरे नंबर की टीम को हरा दिया। बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया, करारी शिकस्त। मीरपुर में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की, 307 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की पूरी टीम 46 ओवर में 228 रन पर ढेर हो गई। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उन्हीं 50 राज्यों में एक राज्य है साउथ कैरोलिना, जहां कल एक चर्च में गोलियां चली, 9 लोग मारे गए, इनमें 6 महिलाएं शामिल हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। ताज़ा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल संदीप, देखें जो संदिग्ध है उसे नॉर्थ कैरोलिना में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे FBI के हवाले कर दिया गया है और उसे साउथ कैरोलिना लाया जा रहा है जहां उस पर मुकदमा चलेगा। गिरफ्तारी के वक्त उसने एक टी शर्ट के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और पुलिस का कहना है कि नॉर्थ कैरोलिना के शेल्बी शहर के कुछ दुकानदारों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने इसे एक हेट क्राइम या नफरत की वजह से किए गए जुर्म की श्रेणी में रखा है। यहाँ हेट क्राइम तब माना जाता है जब कत्ल, डकैती या किसी और बड़े जुर्म में नस्ल, रंग, धर्म वगैरह भी जुर्म की वजह हो। पुलिस के अनुसार डिलन रूफ नाम का ये नौजवान चार्ल्सटन के एक अफ्रीकी अमरीकी चर्च में बुधवार की शाम में घुसा जब वहां प्रार्थना सभा चल रही थी। वहां मौजूद लोगों के साथ एक घंटे बैठा भी और फिर गोली चलानी शुरू कर दी। उसके कुछ दोस्तों ने स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान इशारा किया है कि वो नस्लवादी बातें करता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोगों की जान भी ले सकता है। एक महिला जिसे उसने ये कहकर छोड़ दिया था कि वो दूसरों को बताए इस वारदात के बारे में, उसने कहा है कि गोलियां चलाते वक्त वो कह रहा था, मुझे ये करना ही होगा, तुम हमारी औरतों का बलात्कार करते हो और हमारे देश पर कब्जा कर रहे हो, तुम्हें जाना ही होगा। राष्ट्रपति ओबामा समेत कई राजनेताओं ने इस हमले की भर्त्सना की है और पूरे देश में कई चर्चों में, कई गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साउथ कैरोलिना में नस्लवाद का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, जैसा कि ब्रजेश उपाध्याय बता रहे थे। अमेरिका के अन्य हिस्सों की तरह नस्लवाद यहाँ भी गाहे बगाहे सिर उठाता रहा है। ताज़ा घटनाक्रम और नस्लवाद के इसी इतिहास को ब्रजेश उपाध्याय समेट कर लाए हैं अपनी वॉशिंगटन डायरी में।
We woke up today and the heart and soul of South Carolina was broken.
साउथ कैरोलिना का दिल टूट गया, ये कहते हुए वहाँ की भारतीय मूल की गवर्नर निकी हेली की आवाज़ रूंद सी गई। लेकिन बहुत लोग शायद कहेंगे कि निकी हेली को कहना चाहिए था कि साउथ कैरोलिना का दिल एक बार फिर से टूट गया। चार्ल्सटन शहर के जिस चर्च में कत्लेआम मचा, ये वही चर्च था जिसे 1820 के दशक में शहर के गोरे नागरिकों ने जलाकर राख कर दिया था, क्योंकि वहां काले गुलामों के विद्रोह की साजिश रची जा रही थी। इस चर्च की नींव रखने वाले डेनमार्क वेसी और उनके कई काले साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। वेसी खुद भी गुलाम रह चुके थे और लॉटरी में जीती रकम से उन्होंने अपने मालिक से अपनी आज़ादी खरीद ली थी, लेकिन अपनी पत्नी को आज़ाद नहीं करवा पाए और तब के कानून के अनुसार उनके जो भी बच्चे हुए वो उस मालिक की संपत्ति थे, यानी गुलाम थे। बुधवार की रात को जब एक गोरा नौजवान उस चर्च में घुसा तो वहां बैठे लोगों में थी 87 साल की सूजी जैक्सन, 74 साल के रेवरेंड डैनियल सिमंस और 70 साल की इथल लैंस भी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में देखा होगा उन जगहों को जहां लिखा होता था कालों के लिए यहां घुसना मना है, पानी पिया होगा काले और गोरों के लिए बने अलग अलग नलकों से, तस्वीरें देखी होंगी 1963 में पास कहीं अलबामा राज्य में एक काले चर्च पर हुए बम धमाके की जिसमें 4 बच्चियां मारी गई थीं। लेकिन बुधवार की शाम क्या उन्हें ये डर रहा होगा कि 21वीं सदी में जब देश का राष्ट्रपति काला है, इंसाफ की बागडोर संभालने वाली अटॉर्नी जनरल काली हैं, राज्य की गवर्नर भारतीय मूल की हैं, कांग्रेस में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सेनेटर काला है, वहां उनके अपने ही चर्च में घुसकर कोई उनकी जान ले लेगा? इस सवाल का जवाब वो अब नहीं दे सकते, लेकिन शायद उन्हें डरना चाहिए था। 2 महीने पहले ही पड़ोस के ही एक शहर में एक गोरे पुलिस वाले ने एक निहत्थे काले इंसान को गोली मार दी थी। न्यूयॉर्क में एक काला इंसान चिल्लाता रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोचे रखा और उसकी मौत हो गई। कभी फर्गसन तो कभी बाल्टीमोर, हर रोज हो रहे विरोध प्रदर्शन। उन्हें शायद समझना चाहिए था कि अमरीका अभी भी रंग, नस्ल और मजहबी दीवारों को तोड़ नहीं पाया है, और इस माहौल में अगर बंदूक तेल साबुन की तरह दुकानों में बिके तो फिर तो करेला नीम चढ़ा। इस हमले के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान डिलन रूफ को उनके एक रिश्तेदार ने हाल ही में उनके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर एक .45 कैलिबर की बंदूक दी थी। राष्ट्रपति ओबामा ने एक बार फिर से बंदूकों के खिलाफ आवाज उठाई है।
I've had to make statements like this too many times. Once again, innocent people were killed in part because someone who wanted to inflict harm had no trouble getting their hands on a gun.
वो कह रहे थे कि एक बार फिर से बेगुनाह मारे गए हैं और उसकी एक वजह यह है कि हमला करने वालों को बंदूक मिलने में कोई मुश्किल नहीं आती। 2008 में ओबामा की जीत के बाद मैं चार्ल्सटन शहर गया था। उनकी जीत, उनकी उम्मीद भरी आवाज काले लोगों के लिए एक सपने की तरह थी। वो किसी जादू की उम्मीद कर रहे थे। आज उन्हीं ओबामा की आवाज में मायूसी और बेबसी सुनाई देती है। साउथ कैरोलिना में अमरीकी झंडे झुका दिए गए हैं, लेकिन गुलामी और नस्लवाद के हक में बंदूक उठाने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाला कॉन्फेडरेट फ्लैग या झंडा लोगों के विरोध के बावजूद अभी भी एक इमारत पर लहरा रहा है। मारे गए लोगों की याद में चर्चों में दुआएं मांगी जा रही हैं। स्थानीय अखबार की हेडलाइन है, चर्च पर हुए हमले में 9 की मौत, और हेडलाइन के ठीक ऊपर चमक रहा है एक लाल रंग का इश्तेहार बंदूकों की एक दुकान का। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी का ये पन्ना आप थोड़ी देर बाद हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर भी आकर पढ़ सकते हैं। मुंबई में जहरीली शराब पीने की वजह से कम 13 लोग मारे गए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं मुंबई स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर के पास। अश्विन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, सुन
जी, बताएं क्या ताज़ा जानकारी है इस खबर पर आपके पास?
इस घटना के बारे में ऐसा है कि मलवणी इलाके में गुरुवार शाम को यह घटना हुई है, जिसमें जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई है और 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से 4 को मलाड़ और मालवणी के अलग अलग अस्पतालों में ICU वेंटिलेटर पर रखा गया है। पुलिस कंट्रोल रूम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 25 से 30 साल की उम्र के कुछ युवक है जो उस उधर एक अक्सा बीच पे गए थे कल बारिश का आनंद लेने के लिए। वहां उन्होंने मालवणी के जुरासिक पार्क इलाके से एक शराब खाने से देसी शराब खरीदी, जिसे पीने के बाद उन्हें स्वास्थ्य की शिकायत जैसे उल्टी, सांस में तकलीफ और सीने में जलन होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें मलाड़ के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल किया, जहां 13 लोगों को मृत घोषित किया गया और 10 युवकों को, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, ICU में रखा गया है। इनमें से 4 वेंटिलेटर पर रखा गया है।
जिले में क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है?
इसमें पुलिस ने जो शराब खाने का जो मालिक है राजू लंगड़ा, उसको गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। क्राइम ब्रांच इस मामले की आगे जाँच कर रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन अघोर इस तमाम जानकारी के लिए। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को लेकर उठे विवाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन पार्टी की राज्य इकाई ने वसुंधरा राजे का खुलकर समर्थन किया है। भाजपा जहां वसुंधरा पर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इन आरोपों की आंच मुख्यमंत्री राजे और उनके पुत्र बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह तक भी पहुंची है। प्रतिपक्ष का आरोप है कि ललित मोदी ने सांसद दुष्यंत सिंह की कंपनी को मॉरिशस के जरिए आर्थिक लाभ पहुंचाया है। यह भी कि राजे ने कथित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिनके विरुद्ध कथित तौर पर भारत सरकार कुछ गंभीर मामलों में जाँच कर रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विदेश मंत्री स्वराज का बचाव किया, लेकिन राजस्थान के मामले में बीजेपी नेतृत्व ने चुप्पी साधकर कई सवाल खड़े कर दिए। इन आरोपों पर शुरुआती खामोशी के बाद राज्य में बीजेपी सरकार और संगठन मुख्यमंत्री राजे की हिमायत में आ खड़े हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ कहते हैं ये आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा पूरी पार्टी और सरकार राजे के साथ है।
जो कुछ जानकारियां उनके पास थी उन्होंने अपने संक्षिप्त व्यक्तित्व में बता दिया है। माननीय वसुंधरा जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की, केंद्र की, सारा विधायक दल हमारे इस नेता के साथ हम हैं। ये हमारे सबका की अगुवाई करती रही, हमारा नेतृत्व करती रही और करती रहेगी।
राज्य बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुख्यमंत्री ने समय मांगा और उन्हें इनकार कर दिया गया। सांसद दुष्यंत सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे इस समय विदेश में हैं और उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। सांसद ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। उधर विपक्षी कांग्रेस ने राज्य पर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से तहकीकात की मांग की है। कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य भर में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कहते हैं आरोप गंभीर हैं।
वो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं, जो कंपनीज का ट्रांजेक्शन हुआ है, मॉरिशस से जो पैसा हिंदुस्तान उन कंपनीज में आया है, इस सब की जांच होनी चाहिए और हम समझते हैं कि इसमें सीबीआई को जांच करनी चाहिए, लेकिन जांच तब हो जब ये लोग अपने पदों से हट जाएं। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसके खिलाफ कोई जांच एजेंसी अपना काम नहीं कर सकती। इसकी मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर लीगली भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिना विलंब के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए।
राजस्थान में यह विवाद ऐसे समय उठा है जब गर्मी से त्रस्त लोग बरसात का इंतजार कर रहे थे। बरसात तो बहरहाल नहीं आई, लेकिन पक्ष विपक्ष में आरोपों की झड़ी लग गई है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की अफवाह इन दिनों चरम पर है। राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों में बच्चा चुराने के संदेह में कई लोगों की पिटाई हो चुकी है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के सिलपहरी गांव में एक नौजवान की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। गांव के लोगों का कहना था कि किसी दूसरे इलाके से आया यह नौजवान पिछले कुछ दिनों से गांव में भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। लोगों को लगा कि यह बच्चा चुराने वाले किसी गिरोह का सदस्य हो सकता है। पिछले महीने भर में बच्चा चोरी के शक में राज्य में आधा दर्जन लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। इनमें अधिकांश ऐसे लोग थे जो या तो भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे या मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। कुछ ऐसे लोग भी गांव वालों की हिंसा के शिकार हुए जो किसी दूसरी जगह से आए थे। केवल शक के आधार पर लोगों की पिटाई के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर के एक पुलिस थाने के प्रभारी हेमप्रकाश नायक कहते हैं,
ये लगातार 15 तारीख से चल रहा है। रूमर कहां से आ रही है पता नहीं है, लेकिन बच्चा चोरी के नाम से एक बार एक पागल को, एक किन्नर को और एक और विक्षिप्त था जो फैक्ट्री में काम करता था लेकिन बाल उसके लंबे लंबे थे, वो तीनों को इन लोगों ने गोंदवारा में और गोवर्धन नगर में मारपीट किए। ये दोनों जो है भविष्य देखने वाले भटरी जो नागपुर इलाके से आते हैं, इनके ये जब रावामाटा गए तो एक आवाज़ सी आई, बोलते हैं कि ये बच्चा चोरी करने वाले हैं करके, और अचानक से बहुत सारे लोग दौड़ पड़े इनको दौड़ा के मारने।
असल में छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के मामले आम हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों पर यकीन करें तो पिछले 5 सालों में राज्य से 14,000 से अधिक बच्चे गायब हुए हैं। इसके अलावा 19,000 से अधिक बालिग लड़कियां और महिलाएं लापता हैं। रायपुर के उरला इलाके के ग्रामीण कहते हैं कि उनके गांव से तो अब तक किसी बच्चे के गायब होने की खबर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरे जिले से किसी बच्चे के गायब होने की खबर जरूर सुनी है।
चोरी के सुनाई चलत है और वही दरियान में सब कुछ भी घटना आवत है, होवत है, ऐसे है।
सब गांव में चला थे कि बच्चा चोर घूमत है, दहशत में बस्ती वाले लोग अपने अपने बच्चे लोग को संभाल के रखे हैं, घर से बाहर निकलो, घर में रहो।
ऐसी अफवाहों से परेशान पुलिस का अमला गांव-गांव में मुनादी करवा रहा है कि कहीं कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ है। पुलिस पर्चे मटवा रही है। रायपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर का दावा है कि पिछले 1 साल में रायपुर जिले में एक भी बच्चे के गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।
उरला थाना क्षेत्र में पठारीडी गांव, वहां पर दो लोगों को ज्ञात लोग हैं, उन लोगों को वहां की भीड़ ने बच्चा चोर समझकर उनके साथ में मारपीट की, उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये सिर्फ एक अफवाह है जिसके कारण लोगों के अंदर इस चीज़ को सही मान रहे हैं और इस प्रकार से घटना कारित कर रहे हैं। और अभी बीच में खमतराई में भी घटना हुई थी जिसमें हम लोगों ने जिन लोगों ने मारपीट की थी उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, तो निश्चित रूप से ये अपराध की श्रेणी में आता।
बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रथमेश मिश्रा मानते हैं कि जिस तेजी से अफवाहें फैली हैं उनमें धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में तेजी से अफवाह फैली कि फला इलाके में पुल निर्माण के लिए बच्चों की बलि दी जानी है, इसलिए बच्चों की चोरी के लिए कोई गिरोह काम कर रहा है। कौवा कान ले गया की तर्ज पर अफवाहें फैलती रही। पुलिस और जनप्रतिनिधियों को जिस सक्रियता के साथ इस मामले में हस्तक्षेप करना था उसमें पुलिस ने उन लोगों ने काफी देर कर दी।
धार्मिक अंधविश्वास और संचार के नए नए माध्यमों ने अफवाहों को हवा से भी तेज गति दे दी है और छत्तीसगढ़ में इसका खामियाजा ऐसे लोग भुगत रहे हैं जिन्हें अनजान और बाहरी मान लिया जा रहा है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। रमजान के पवित्र महीने में ब्रिटेन में अस्पताल मुसलमानों से एक बहुत ही विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। सलमान रावी बताएंगे इस बारे में अच्छे से, लेकिन पहले प्रगति सक्सेना स्टूडियो में आ चुकी हैं कई अखबार लेकर। क्या छपा है आज अखबारों में?
जी संदीप जी, आज जो सबसे बड़ी खबर है सारे लगभग सारे अखबारों में वो है आडवाणी जी का जो इंटरव्यू था, उसने मोदी सरकार को आपातकाल में उलझाया। और दैनिक भास्कर में खबर है कि सोमनाथ भी बोले हैं कि आपातकाल का डर बना हुआ है। फिर वसुंधरा राजे और ललित मोदी का प्रकरण छाया हुआ है अखबार में। योग के लिए राजपथ तैयार हो रहा है योग दिवस के लिए, तो इसलिए सलाह दी जा रही है कि योग दिवस पर वहाँ से बचकर निकलें। काफ़ी सजाया गया है उसको और कालीन वालीन बिछे हैं, दरियाँ बिछी हैं योगासन करने के लिए। एसीबी के जॉइंट कमिश्नर जो हैं भ्रष्टाचार विरोधी जो ब्यूरो है उसके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी आय से अधिक संपत्ति के लिए सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा अमर उजाला में म्यांमार ने भारत को दिया टकासा जवाब, ये खबर है जिसमें कि म्यांमार ने भारत को साफ साफ कह दिया कि वो इतने सक्षम नहीं है कि घने जंगलों में भारत विरोधी चरमपंथियों के कैंपों पे को खोजें और उन पे हमला करें, तो उन पे वो काबू नहीं रख सकते, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। इसके अलावा जनसत्ता में एक रोचक खबर है कि 6 साल बाद डॉलर पर दिखेगी महिला की तस्वीर। और स्वरूप संपत जो अभिनेत्री हैं और भाजपा सांसद परेश रावल की पत्नी हैं उनको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में मनोनीत कर लिया गया है। दैनिक जागरण की खबर है कि बच्चों को छोड़कर मंत्री में मशगूल हुआ स्टाफ। हिंदुस्तान में खबर है कि स्मार्टफोन पर हो जाएं रमज़ान के लिए तैयार, क्योंकि रमज़ान आ गया है तो स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसी ऐप हैं जिनसे आप रमज़ान की जानकारी ले सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। अखबारों की समीक्षा से पहले मैंने जिक्र किया था एक खबर का, वो खबर ये थी कि ब्रिटेन में ज़रूरतमंद मुसलमान मरीज जो हैं वो किडनी लीवर बदलवाने के लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। इसकी एक वजह यह है कि मुसलमानों में अंगदान करने का जो चलन होता है वो आमतौर पर बहुत कम है। यही वजह है कि डॉक्टर अब मुसलमानों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जॉन मैकमैनस की रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
डॉक्टर अदनान शरीफ बर्मिंघम में स्थित क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल की एक युवा मुसलमान मरीज से बात कर रहे हैं। यहाँ गुर्दे की बीमारी से संबंधित मरीज आते हैं। नजमा का यहाँ डायलिसिस हो रहा है। उन्हें इस प्रक्रिया से एक हफ्ते में 3 बार गुजरना पड़ता है क्योंकि उन्हें गुर्दे में सूजन है। नजमा को प्रतिरोपण की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर शरीफ को लगता है कि उन्हें इसके लिए कम से कम 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें उपयुक्त डोनर नहीं मिल रहा है। यहाँ दरअसल उन्हें अपने लिए एक जेनेटिक या अनुवांशिक मैच की जरूरत है। डॉक्टर अदनान शरीफ का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान मरीजों को डायलिसिस में ज्यादा समय बिताना होगा।
Without a doubt, our Muslim patients will spend a lot longer.
मुसलमान मरीज जहां अंगदान के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, वहीं इनमें से कुछ की मौत हो जाएगी क्योंकि उन्हें प्रतिरोपण के लिए गुर्दे नहीं मिल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है।
ब्रिटेन में दक्षिण एशिया से आने वाले मुसलमान सबसे ज्यादा हैं जो इंतजार करते हैं, और उनका ये इंतजार औसतन अंग प्रतिरोपण के लिए गैर मुसलमानों से ज्यादा समय के लिए होता है, लेकिन ये इंतजार और भी ज्यादा हो सकता है। इस बीच क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में डॉक्टर मुसलमानों को अंगदान करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके प्रियजनों के शव को दान करने की स्वीकृति मांग रहे हैं। ये एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि कई मुसलमान इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस्लाम इस तरह की मदद की निंदा करता है। हालांकि कुरान में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कई विद्वानों की इस बारे में अलग अलग राय है। डॉक्टर यासिर मुस्तफ़ा मस्जिदों में जाकर अंगदान के बारे में नमाजियों को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तरह की असमंजस की स्थिति है।
Regardless of the ethnicity of the Muslim, they might be from Africa, they might be from Asia, they might be native Brits as well who are practicing Islam. But
भले ही वो मुस्लिम हों, इनमें से कुछ अफ्रीका से हैं, कुछ एशिया से या फिर ब्रिटेन से, और ये इस्लाम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हर बार सवाल एक जगह जाकर अटक जाता है। वो इसका जवाब चाहते हैं। जवाब ये कि मुस्लिम धार्मिक नेता अंगदान के बारे में क्या कहते हैं, क्या अंगदान को मंजूरी मिलनी चाहिए? क्या इस्लाम में इसकी अनुमति है?
डोनर की कमी केवल ब्रिटेन की समस्या नहीं है। अप्रैल महीने में इस्लामिक विद्वानों ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में चर्चा की थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर ने अंगदान का समर्थन किया था, लेकिन एक वरिष्ठ धार्मिक नेता ने चिंता जताई थी कि क्या कयामत के दिन, जब मृत लोगों को दोबारा जीवित किया जाएगा और अगर उनके कुछ अंग नहीं होंगे तो इसका क्या असर होगा। ये एक मिसाल है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं में अंगदान को लेकर कश्मकश बरकरार है। रेहाना सादिक एक मुसलमान हैं और वो परेशान लोगों को सलाह मशवरा देने का काम करती हैं। वो कहती हैं कि इस मुद्दे पर सलाह लेने उनसे कोई परिवार नहीं आया है और उन्हें इंतजार है कि कोई अंगदान के मुद्दे पर उनसे बात करने आए।
This division within the community is quite stark, in fact.
वैसे इस मुद्दे पर इस समुदाय में विभाजन काफी गहरा दिखाई देता है। जहां मृत शरीर के अंगों को निकालना एक तरह से उसे विकृत करने के तौर पर देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि ये इस्लाम की तरफ से दिया गया महान काम है कि आप किसी को अंगदान का तोहफा देकर किसी की जिंदगी बचा रहे हैं।
ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार मुसलमानों में मृत के शरीर का अंगदान बहुत कम किया जाता है और ऐसा दुनिया के ज़्यादातर देशों में होता है। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां चिकित्सा में निवेश की कमी के चलते ऐसा नहीं हो सकता। अन्य के लिए ये एक धार्मिक मुद्दा है।
रिपोर्ट सुना रहे थे सलमान रावी और अब जानते हैं आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है।
ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT दोबारा कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज CBSE की याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले AIPMT का पर्चा लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को 4 हफ्तों के भीतर प्रवेश परीक्षा दोबारा कराने के लिए कहा था। इस पर CBSE ने तर्क दिया था कि इतने कम समय में परीक्षा दोबारा कराना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिपरास से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच ग्रीस में एक संयुक्त गैस पाइपलाइन निर्माण समझौते पर दस्तखत होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई मूल के पूर्व टेनिस चैंपियन बॉब ह्यूइट की याचिका पर प्रिटोरिया की अदालत में आज से सुनवाई शुरू हो रही है। बॉब ह्यूइट को हमले और बलात्कार के मामले में अदालत ने पिछले ही महीने 6 साल की सजा सुनाई थी। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में सालाना ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम की बैठक शुरू हो रही है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन समेत कई प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं। फोरम में रूस और चरमपंथ विषय पर चर्चा होगी।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। क्रिकेट के मैदान पर भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जा रही है। पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। मैच के पहले दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी थी। हालांकि दूसरे दिन मेजबान श्रीलंका टीम ने 3 विकेट गंवाकर 178 रन जरूर बना लिए थे। कौशल सिल्वा 80 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं। कप्तान अजंता मेंडिस 10 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। आउट होने वाले बल्लेबाजों में दीमत करुणारत्ने 21, कुमार संगकारा 50 और 10 रन बनाने वाले लाहिरू थिरिमन ने रहे। पाकिस्तान के लिए वाहब रियाज ने 2 और मोहम्मद हफीज को 1 कामयाबी मिली। अब एक खबर हॉकी से। पिछले मैच में अमेरिका को हराकर आत्मविश्वास से भरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल से पहले 4थे अभ्यास मैच में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात दे दी। गुरबाज सिंह के गोल से भारतीय टीम ने मैच के पहले ही मिनट में अपना खाता खोला। इस गोल से विपक्षी खेमा थोड़ा सतर्क हुआ। इसके बावजूद भारतीय टीम ने लगातार हमले किए और दूसरा गोल 12वें मिनट में देवेंद्र वाल्मीकि ने दागा। इसके 8 मिनट बाद फॉरवर्ड आकाशदीप ने तीसरा गोल किया। ब्रिटेन के लिए एकमात्र गोल 28वें मिनट में किया गया। भारतीय डिफेंडर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं दिया। भारतीय टीम विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल के पहले मैच में 20 जून को फ्रांस का सामना करेगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
इसके साथ ही वक्त हो चला है एक बार फिर प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। अमरीका के साउथ कैरोलिना के चर्च में हुई गोलीबारी के सिलसिले में 21 वर्षीय डिलन रूफ को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरिया के चरमपंथी गुट बोको हराम ने निजेर के दो गांवों पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता इमरान फारूक की हत्या के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने पर्यावरण संरक्षण पर कड़ा रुख रखने के लिए पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के इस अंक में इतना ही। हमारे सहयोगी हेमंत कुशवाहा स्टूडियो तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पूरी टीम को अनुमति दीजिए।